भरत के मामा कहा कि अब शादी के बाद आए हैं तो ननियाल चलना चाहिए, मैं बच्चों को ननियाल ले जाना चाहता हूं हमारे केकई देश। तो महाराज दशरथ ने कहा ना आपका अधिकार है, आप जरूर ले जाइए, लेकिन ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरु आश्रम से आए तो विश्वामित्र के साथ चले गए, अब शादी करके घर में आए तो आपके साथ जाए, हमने तो आंखें भर के देखा भी नहीं है। ऐसे कीजिए अभी आप भरत और शत्रुघ्न को ले जाइए, और जब उनको वापस आए ले आएंगे तब राम लक्ष्मण को ले जाइएगा, तो दो हमारे पास भी आंखों को कुछ तो ठंडक पहुंचे, दर्शन करें इनका, देखें आनंद लें बच्चों का, तो आप ले जाइए। और युधाजित जैसे भरत शत्रुघ्न को ले जाने के लिए तैयार हुए, यहां बालकांड समाप्त होता है वाल्मीकि रामायण का, यहां से अयोध्या कांड शुरू हो रहा है। अयोध्या कांड शुरू होता है रामचंद्र के गुणों से। अब जैसे ही रामचंद्र, जैसे युधाजित चला गया भरत और शत्रुघ्न के साथ, महाराज दशरथ ने राम को राजकाज के काम में लगा दिया। अब रामचंद्र के गुण ऐसे हैं कि किसी का दुख देख नहीं सकते हैं, कोई एक बार भी भला करता है कभी भुलाते नहीं है, और कोई गलती कितनी करते हैं उसकी कभी याद भी नहीं रखते, और कोई उनके पास आए तो उसको झिझक नहीं होती है, पहले ही जाके बुला ले, बोलते हैं उनसे। तो एक दिन महाराज दशरथ के मन में आया कि वशिष्ठ जी मुझे कुछ लगता है कि अब ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं लग रहे हैं, पता नहीं हो सकता है कि कुछ हो जाए, मेरा विचार है कि मैं राम को राज पद के ऊपर अभिषिक्त कर दूं, अथवा युवराज का पद इनको दे दूं, ऐसा मेरा विचार है। और वशिष्ठ जी ने कहा ये तो अति उत्तम है। तो फिर एक सभा बुलाई गई सारे मंत्री मंडल की, सभासदों की, और महाराज दशरथ ने कहा, वैसे वाल्मीकि रामायण में तो ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन तुलसीदास ने अन्य स्थानों में प्रचलित कथा है कि महाराज दशरथ जब आईने में अपना मुकुट ठीक कर रहे थे तो कान के पास दो चार सफेद बाल दिखे, तो कान को कर्ण कहते हैं, और यही सफेद बाल इसलिए आते हैं कान में, कहते हैं कि अब बुढ़ापा आ रहा है, भगवान का भजन करो बाकी काम छोड़ो, तो ये कान के पास ही पहले आते हैं क्योंकि ये सावधान करने के लिए। तो महाराज दशरथ ने दो चार ऐसे बाल देखे तो मन में आया कि 60,000 साल तक मैंने इस रघुवंश की परंपराओं में आप प्रजा की सेवा की है, अब मैं हमारी परंपराओं की तरह अब मैं ऋषि वृत्ति से रहना चाहता हूं और योग से प्राण त्यागना चाहता हूं, अब मैं सेवानिवृत्त होके मेरे पुत्र रामचंद्र को मेरी जगह पे आपकी सेवा में प्रिंस रीजेंट मतलब युवराज पद पे अभिषेक करना चाहता हूं। सब सभासदों ने कहा महाराज आपकी जय हो, हमारे घर में तो हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो बच्चे और बच्चियां कहती हैं वो दिन कब आएगा जब रामचंद्र शतरंज हाथी के ऊपर गजराज के ऊपर चढ़ेगा जिसकी दो सूंड और चार दांत हैं, ये तो ऐरावत के वंश का हाथी है जिसके ऊपर राज सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ महाराज दशरथ चढ़ता है, केवल कब सफेद छत्र के नीचे रामचंद्र बैठेंगे, उनकी सवारी निकलेगी, हमारी आंखें तो इसका इंतजार कर रही हैं महाराज, सब गुणों में संपन्न है राम जी। लेकिन दशरथ बड़ा प्रसन्न हुआ अंदर, लेकिन राजनीति से पहने लगे, बहुत अच्छी बात है सभासदों, आप मेरी हां में हां क्यों मिला रहे हो, क्या मेरे राज में आप कोई कष्ट है कि मेरी जगह पे दूसरे को राजा बनाना चाहते हो, तो ये उनकी परीक्षा के लिए पूछा। तो सबने कहा महाराज इस आप इक्ष्वाकु वंश के सारे राजा महान है, लेकिन रामचंद्र अपने आप में है, इसके बराबर और कोई नहीं है, क्योंकि भगवान से तुलना किसी की हो नहीं सकती है, हमको बड़ी प्रसन्नता होगी अगर इनको राजा बना दिया जाए। महाराज ने पूछा गुरु वशिष्ठ जी मूरत के बोला अभिजीत मूत्र मूरत कल ही है और ऐसा मूरत बहुत अच्छा है, आप मंगल कार्य कर ही दीजिए। अब महाराज दशरथ ने कहा समंत्र सारी अभिषेक की तैयारी करो, सब पवित्र नदियों का जल मंगा लो और सब सामग्री तैयार हो जाए। और राम जी को कहा कि बेटा आपसे प्रसन्न है सारी प्रजा, लेकिन एक बात राज की शिक्षा मैं आपको देना चाहता हूं, आपसे भयभीत प्रजा को कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं पुराने राजा महाराजा जब बाहर निकल के प्रजा में आते थे तो लोग पुष्प बरसाते थे, क्योंकि वो लोगों को भय नहीं था, उनको उनके दिमाग के ऊपर राज नहीं करते थे, उनके दिल के ऊपर राज करते थे, तो पुष्प वर्षा होती। आजकल बाहर निकलता तो लोग गोलियां बरसाते हैं। कोई राजा खुलेआम नहीं घूम सकता है, कोई प्रधानमंत्री नहीं घूम सकता है, क्योंकि दिल के ऊपर राज नहीं। और दूसरा कहा आपसे मिलने में किसी को भय नहीं होना चाहिए, और बेटा प्रजा को पुत्र के समान समझना चाहिए, उनके दुख सुख को अपने संतान के समान समझना चाहिए, प्रजा और पुत्र में कोई अंतर नहीं होता है, बाकी विधि विधान आपको गुरु वशिष्ठ जी सिखाएंगे। और गुरु वशिष्ठ जी ने जाके उनको कहा आज आप चटाई के ऊपर कुश घास के ऊपर सोना व्रत धारण करना और कल आपका सुबह अभिषेक होगा। ये सारी बात पूरे चारों ओर अयोध्या में फैल गई है। अब एक प्रश्न यहां उठता है कि इतना बड़ा उत्सव हो रहा है तो फिर महाराज जनक को भी तो मंगाना चाहिए, कौशल्या के पिता को भी तो मंगाना चाहिए, कि कई देश से संबंधियों को भी मंगाना चाहिए, और इन सब के न आने का क्या कारण है, ऐसे क्यों किया गया। और दूसरा एक प्रश्न ऐसा भी रामायणों में कहीं लिखा मिलता है कि जब महाराज दशरथ विवाह के लिए कैकई देश गए थे तो महाराज कैकई ने पूछा था कि आप विवाह क्यों करना चाहते हो, आपके दो पत्नियां तो पहले मुख्य हैं और भी पत्नियों का आपके पास सेवा में बहुत हैं। बोला अभी तक कोई उत्तराधिकारी का जन्म नहीं हुआ है, कोई पुत्र संतान नहीं है। तो महाराज ने कहा इसका मतलब आप विवाह करना चाहते हो मेरी पुत्री कैकई से पुत्र संतान के लिए ना, तो कन्या शुल्क लिख के दो। कन्या शुल्क का मतलब है इसका बेटा, इसका जो पुत्र होगा वो राज अधिकार राजा का अधिकार राजा बनेगा। तो ये महाराज दशरथ ने लिख के दिया था, और वो पता केवल वशिष्ठ को था, गुरुजी को, और महाराज कैकई को था, और जनक को था, और अपने दशरथ महाराज को था, और किसी को नहीं था। तो किसी ने कहा कि क्या ऐसा है कि जब वहां चला गया भरत तब राज तिलक दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन सारी रामायणों को पढ़ने से ये महात्माओं ने निर्णय निकाला है कि नहीं, दशरथ के मन में कुछ ग्रह गोचर ऐसे खराब दिख रहे थे कि ये कार्य जितना तत्काल हो जाए वहां करना चाहिए, और ये हमारे अपने संबंधी है, ये तो उत्सव महीनों तक चलेगा तब इन सबको बुला ही लेंगे, लेकिन ये जो पूजा पाठ वाला काम है ये कर लेना चाहिए। उनके हृदय में ये भाव है कि जनक हमारे अपने हैं, हमारे कैकई नरेश हमारे अपने हैं, कोई अलग नहीं है। और दूसरा भाव भगवान की योग माया का ये था कि जनक जी यहां हो, कैकई नरेश यहां हो, कौशल्या के माता पिता यहां हो, तो फिर रामचंद्र को वनवास देना संभव ही नहीं होगा। वो तो कैकई को उसका पिता समझाएगा क्या कर रही है ये, और जनक महाराज कहां जाने देगा सीता को वनवास में, तो ये लीला ही नहीं हो सकती। तो इनके ना आने के पीछे मुख्य कारण ये योजना भाई, तो जो देव योजना थी। अब जब सारा अयोध्या आनंद में है तो जब चांदनी होती है तो सब आदमी बहुत आनंद लेते हैं, लेकिन चोर बड़ा दुखी होता है, बोला ये चांदनी रात है कहां जाऊंगा डाका डालने। तो चांदनी में चोर को तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, और आज सारी अयोध्या आनंद में है लेकिन देवता बड़े दुखी हैं। देवता कहते हैं आज रामचंद्र अगर राज सिंहासन के ऊपर बैठ गया तो हमारे रावण को मार के हमारा जो हित करना है उसमें तो बड़ी देर हो जाएगी। तो देवता बड़े दुखी होके सरस्वती को कहने लगे सरस्वती अब कुछ करो, अब विघ्न डालना पड़ेगा। सरस्वती ने कहा ये तो क्रूर ग्रह की तरफ किसी के घर में मंगल कार्य हो और वहां जाके किसी की हत्या करना, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अब देवताओं का काम तो करना है। सरस्वती वहां से रवाना हुई, और पद्म पुराण में लिखा है देवता उन्हें अपने काम को सिद्ध करने के लिए एक अप्सरा को के कई देश में मंथरा के रूप में भेज दिया था। यह अप्सरा आई हुई थी देवताओं के, देवताओं की भेजी हुई, जो केकई के साथ दासी होके आई थी, लेकिन मुंह चढ़ी हुई थी और केकई को जो चाहती थी वो मना लेती थी, लेकिन ये थी अप्सरा। अब जब सरस्वती सारी अयोध्या में सबके हृदय को देखा, अरे सबके हृदय में राम प्रेम ऐसे छलक रहा है तो कौन मेरी बात मानेगा। एक ये कुब्जा दिखाई दी, ये जो मंथरा कुबड़ी जो है ना, ये इसके मन में, इसकी जबान के ऊपर मैं बैठ के काम कर सकती हूं। अब मंथरा अपनी छत के ऊपर केकई महल में चढ़ के देखती है, पूरी अयोध्या सजी हुई है, पास में कौशल्या की छत के ऊपर देखती है तो कौशल्या की धा मां बैठी है और धा मां से पूछती है, ए बहन, ये आरा सारा अयोध्या इतना आनंदमय क्यों है। बोला, मेरे को दिल में ये आनंद था कोई पूछने वाला हो, आपने पूछा है तो मुझे बड़ा आनंद मिला। वो जो मेरा लाला राम जिसको मैं गोद में खिलाती थी ना, आज युवराज बनेगा, बहुत खुशी की बात है। मंथरा ने यह सुना जैसे उसको सांप ने डंका हो, लंबा सांस लेती हुई नीचे आई और सीधी केकई के कक्ष में गई और जाके कहा, सो आराम करो, मौज करो, तुम्हारा आए तो हो रहा है। ए बोला, कुबड़ी, क्या तुम्हारे को लक्ष्मण ने डांटा है क्या? जब लक्ष्मण डांटता है तो तुम ऐसे बोलती हो, क्या हो गया आज? बोला, लक्ष्मण ने डांटा है, तेरा आहित हो रहा है, तेरा अमंगल हो रहा है, तुम यहां सो रही हो। बोला, क्या अमंगल मेरा हो रहा है? बोला, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम अब मेरे जैसी दासी हो जाओगी, दासियों के साथ रहना पड़ेगा, राजमाता बनेगी कौशल्या, उसके बेटे राम का राज तिलक हो रहा है। हाँ, राम का राज तिलक हो रहा है। केकई के गले में माला पड़ी थी, कहा, ए तेरे को उपहार कुबड़ी, मेरे राम के राज तिलक की तो मैं प्रतीक्षा कर रही थी, मेरे भरत से भी मुझे राम बहुत प्रिय है। केकई बोलते, खुश मत हो, दूसरा अस्त्र चलाया वाघ की वाणी का, बोला, इसने काम नहीं किया। बोला, खुश मत हो जाओ, राम जब राजा बनेगा ना तो भरत उस राम का बेटा राजा बनेगा, राम के बाद राम का रे बेटा बेटा, तो आपका बेटा, आपकी परम तो राजकुल से निकल गई ना, और संभव है राजनीति में आपके बेटे को निकाला भी जाए और कहीं मरवा भी सकते हैं। अब केकई का मन बदला, बोला, ऐसे कभी नहीं होने दूं। बोला, आप ठीक समझियो, लेकिन मंथरा आप क्या कर सकते हैं, कल ही तो राज अभिषेक है। मंथरा कहती है, हां मैं जानती हूं क्या कर सकते हैं, आपने मुझे बोला था ना एक बार, आपको महाराज ने दो वचन दिए थे। केकई कहती है, हां, देव असुर संग्राम में महाराज दशरथ सम्रासुर राक्षस से, असुर से युद्ध करने के लिए इंद्र की ओर से लड़ रहे थे, तब केकई सारथी बन के बैठी थी और सारथी पने में महाराज के रथ का एक पहिया, उसका जो कील था वो निकल गया। अब उस हालत में महाराज मूर्छित थे, रथ का पहिये का कील निकला, केकई ने अपनी उंगली कील के अंदर डाली, वहां से रथ को लेके बचा लिया और महाराज ने कहा, केकई, आज आपने बड़ी कुशलता से सारथित्व को निभाया है, मैं आपको दो वर देता हूं, आपको जो चाहिए से मांगे। केकई कहे, आप ही मेरे वर हो, और वर मैं क्या मांगू, आप मेरे वर हो, पति हो, तो और क्या वर मांगू, कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। तो एक कथा प्रचलित ये है, जब केकई छोटी बच्ची थी ना, बहुत चंचल थी, और आज की भाषा में कहते हैं बहुत शरारती थी, एक ऋषि कोई आया हुआ था राजमहल में, और ऋषि सो गया और केकई ने जो कोयले बाहर जले थे उसको हाथों में मला और सोए हुए ऋषि के मुंह के ऊपर मल दी। सुबह ऋषि उठ के देखे तो मुंह काला है, बोला, ये तुमने किया है लड़की, मेरा मुंह काला, तू सारे कुल की कालस बनेगी, तू कुल का कलंक बनेगी, तू सबका मुंह काला करेगी, कुल का मुंह काला करेगी। अब ऋषि के मुख से तो ये वचन निकल गए, इस बच्ची को तो कुछ पता नहीं था, और ऋषि ने कहा, इस घर में रह के क्या करूंगा जहां मुंह काला कर, ये कौन ऋषि था? ये तो कोई दुर्वासा जैसा होगा, ऐसा जो जल्दी में शराब देता है, और कोई नहीं देता है। अब ऋषि वहां से भागा जल्दी में, और जब भागते समय और करमंडल रह गया और आसन रह गया, तत्काल भागा। तो ये तो छोटी बच्ची ने देखा, रही ऋषि का आसन यहां पड़ा है, करमंडल यहां पड़ा है, करमंडल उंगली में पकड़ा, आसन को उठाया और भागी। महाराज महाराज, ये तो उसको मालूम नहीं है कि मैंने काला लगाया, वो तो बच्ची थी। बोला महाराज आपका आसन रह गया। महाराज भी चिंता में था, आसन नहीं है तो भजन कैसे करूंगा, करमंडल नहीं है तो भिक्षा कहां से आएगी, खाऊंगा क्या। महाराज रुक के देखा, महाराज जी आपका आसन, महाराज जी आपका करमंडल। बोला मुंह काला करती है, सेवा भी अच्छी करती है, मेरा करमंडल भी देख गया। महाराज ने कहा बेटी अब मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तू भले कुल का कलंक बलो लेकिन विश्व का कल्याण करोगी, तेरे कार्य से विश्व का कल्याण होगा। और ये जो तुम्हारी उंगली जिसमें तुम लटका के आई हो ना, ये करमंडल ये वज्र की बन जाएगी, ये वज्र जहां टूट सकता है लेकिन तेरी उंगली नहीं टूटेगी। तो ये ऋषि का उसको बहुत बड़ा वरदान दिया हुआ है। और ऐसा भी माना जाता है कि एक दिन छोटे राम ज्यादा समय केकई के कक्ष में ही रहते थे, क्योंकि महाराज दशरथ वहां होते थे, तो केकई का बड़ा प्रेम था राम से। एक दिन राम जी ने केकई की आंखें आके पीछे से बंद कर दी, जैसे बच्चे करते हैं, माँ ने ऐसे कहा मेरा राम भद्र है। बोला हाँ आंखें नहीं खोलूंगा, एक वचन दो तब खोलूंगा। बेटा तुम वचन क्या, तुम ही तो मुझे प्रिय हो, तू प्राण मांग ले, क्या चाहिए। बोला माँ केकई तो मेरे पुत्र मोह में ये कार्य नहीं कर सकती जिस कार्य के लिए अब मेरे को धरती के ऊपर आना पड़ा है, मेरे को वनवास 14 साल देने का कार्य आपको करना पड़ेगा, तभी देवताओं का कार्य सिद्ध होगा। और केके ने कहा बेटा मैं आपको वचन देता हूं, आपका कार्य करूंगी मैं, मुझे कलंक लगेगा लगने दो, लेकिन आपकी इच्छा को पूरा करूंगी, आपने आज माना है तो। ऐसा राम जी की इच्छा थी और केकई में उसमें सूत्रधार बनी है। ऐसे कल भी हमने कहा था, कभी भीष्म जैसे भगवान के भक्त भगवान के विपरीत लड़ते हैं, वो भी भगवान की इच्छा से, नहीं तो कौरवों का नाश कैसे होगा। तो ये देवताओं का, अगर राज तिलक हो जाए तो रामायण पूरी हो गई, तो फिर ये रामायण आगे चलती भी नहीं। और भगवान अब केकई कहती हाँ मेरे को दो वचन याद आ गए मंथरा। और यहां मंथरा कहती पहले वचन में तुम भरत के लिए राज मांग लो, ये तो बड़ा अच्छा है, ऐसे ही करते हैं। बोला दूसरे वचन में राम 14 साल वनवास, और इसलिए कि 14 साल में प्रजा बदल जाएगी, जनरेशन बदल जाएगी, लोग राम को भूल जाएंगे और भरत का राज निष्कंटक हो जाएगा, उसकी राजनीति ये थी। और केकई इस कुसंग से प्रभावित हो गई। अब यहां सीखने की बात यह है, दो बातें सीखने की है। पहली बात यह, पति पत्नी के बीच में जो बात हो वो दासी को बताने की जरूरत क्या है। अब दशरथ और केकई के बीच में युद्ध भूमि में जो बात हुई दो वरदान देने की, वो मंथरा को बताने की क्या जरूरत है। अगर घर की पति पत्नी की बात अगर काम करने वालों को पता लगती है तो पब्लिक में जाती है तो ऐसा अनर्थ होता है। तो एक तो ये कभी नहीं करना चाहिए अपने घर का, और दूसरा अपने से छोटे का शरण लेने से पतन होता है। अब मंथरा का शरण केकई ने लिया, कुसंग कितना प्रेम था राम का, और उसकी वाणी के विष ने केकई के हृदय को बदल दिया। और केकई कहां से आती आई थी ये पता तक नहीं लगा। कभी कभी हम ऐसे लोग काम के लिए रखते हैं, पता नहीं कहां से आते हैं, पता तब लगता है जब सब लेके चले जाते हैं। तो ये कहां से आई कैसे आई उसका पता नहीं लगता है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है रामायण के अंदर से लेनी चाहिए। जो भी है, अब मंथरा ने कहा सुनो केकई जाओ कूप भवन में, कूप भवन मतलब जहां क्रोधित होके पड़ी रहो, और काले कपड़े पहन लेना। लेकिन एक बात सुनना बेटी, जब तक महाराज राम का शपथ नहीं ले तब तक अपने वचन मत मांगना। अब केकई सो गई, महाराज दशरथ सारे काम करके बोला केकई को शुभ समाचार देता हूं, केकई के महल में आए। केकई महारानी, महाराज कहां गई? कूप भवन में। महाराज ने कहा आज क्यों? वहां जाके देखे तो काले कपड़े पहन के धरती के ऊपर पड़ी है जैसे कोई किन्नरी आकाश से गिरी है। महाराज ने कहा आज नाराज क्यों, आज तो खुश होने का दिन है, आज तो कल राम जी का आपका प्रिय है, आपने कहा था राम का राज अभिषेक करो, कल ही तो मुहूर्त आ गया है, आपको खुश होना चाहिए। बोल नहीं रही है, क्यों क्या चाहिए, किसी ने कुछ कह दिया है, अपमान कर दिया है आपका, क्या चाहिए मान लो। प्राण प्रिय क्यों नहीं बोलती हो आपको, मुझे मुझे तो एक रामचंद्र प्रिय है, उसके बाद आप सबसे ज्यादा प्रिय है, मैं राम का शपथ खा के कहता हूं तुम जो मांगोगी मैं दे दूंगा। अब दशरथ ने जब यह कह दिया तब उठ के बैठ गई कैकेयी, बोला बोलती हो मांग लो, जो मांग लो दे दूं, कभी दिया है क्या, दो वचन दिए थे आज तक नहीं पूरे किए। अरे दो वचन की बात करती हो, चार ले लो। नहीं नहीं दो ही बहुत है, बोलो क्या चाहिए। बोलो सुन लीजिए पहला वचन मेरा, आपने राम का शपथ ले लिया है, ये जो सामग्री पड़ी है ना राज तिलक की, इससे मेरे बेटे भरत का राज तिलक होगा। महाराज दशरथ को ज्यादा चिंता नहीं हुई, बोला मेरा राम राज का लालची नहीं है, भरत के राज में भी उसको उतना ही आनंद आएगा। दूसरा वचन सुन लीजिए महाराज, रामचंद्र कल सुबह होते ही बनवासी के कपड़े पहन के वलकल पेड़ की छाल के जटाजूट बांध के बनवास में जाएंगे। महाराज ये सुनते ही मूर्छित हो गए और सचेत होके कहा कैकेयी पहला वचन तुम्हारा मान लेता हूं, दूसरा वचन वापस ले लो, राम की जुदाई में मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, और कैकेयी तुम अपना अहित करने जा रही हो, विधवा बनने का वचन है ये तुम्हारा, राम मुझसे अलग मत करो। कैकेयी ने कहा महाराज वचन दोनों पूरे आपको देने पड़ेंगे। पूरी रात महाराज ने समझाने का प्रयास किया लेकिन कैकेयी अपने हट के ऊपर अड़ी रही। महाराज ने बहुत सी कथाएं बताई लेकिन अब सुबह 4 बजे का टाइम हुआ है। वशिष्ठ जी कहते हैं मुहूर्त आने वाला है, सुमंत्र जाओ महाराज को बुला के आओ, लेट क्यों हो रही है। सुमंत्र अंदर जाके देखें तो महाराज आधे मूर्छित जैसे पड़े हैं, तो जैसे महाराजों के लिए उठाने को गुणगान करते हैं राजा अधिराज महाराज अयोध्या नरेश, अयोध्या नरेश कहते हैं आज मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तो कैकेयी बोल गई कि राज महाराज बहुत खुश थे, इतने प्रसन्न थे कि नींद नहीं आई राम के राज तिलक का, इसलिए ये राम का दर्शन करना चाहते हैं। अब कैकेयी सुमंत्र को भी अगर ये बता देती कि मैंने वर मांगे हैं तो ये मंत्री इतने चालाक है उधर ही काम बिगाड़ देते, ये बड़ी पक्की काम पक्का का, असल में काम तो योग माया कर रही है लेकिन काम इतना पक्का है। तो सुमंत्र ने कहा महारानी राजा के आज्ञा के बगैर तो मैं राम को बुलाने नहीं जा सकता। तब दशरथ ने आस्ते से कहा मैं राम का दर्शन करना चाहता हूं, राम को बुलाओ। तो सुमंत्र बहुत जल्दी तीव्र गति से रथ में गए राम के महल में और राम जी को रथ में बिठाया और राम जी को लेकर आए। और राम जी जैसे आए हैं पिता को प्रणाम किया माता को प्रणाम किया तो पिता के आंखों से आंसू बह रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो कैकेयी कहती है बेटा राम, जब राम जी अपने महल से निकले हैं तब तुलसीदास ने लिखा है कि रघुकुल दीप, दीप का मतलब है जिसमें तेल पड़े बाती पड़े और प्रकाश हो। और जब रामचंद्र ने प्रणाम किया है कैकेयी ने कहा बेटा आज पिता आपके साथ संकोच में कुछ कह नहीं पा रहे, मैं आपको बताती हूं, इन्होंने मेरे को दो वचन दिए हैं। पहला वचन ये है कि राज तिलक मेरे पुत्र भरत को होगा। राम जी का चेहरा इतना और मुस्कुराने लगे, खुश हो गए कि लिखा है रघुकुल मणि, दीप में तो बाती तेल होगा तब चमकेगी, मणि तो अपने आप में चमकती है, उसका शोभा ही चमकने का है। उनके राज लक्ष्मी जाने का दुख नहीं हुआ। और कहती है दूसरा वचन मैंने ये मांगा है महाराज से, आप 14 वंश के लिए राम वनवास जाएंगे और तब लिखा है भानु कुल भानु। रामचंद्र आज सूर्य की तरह चमकने लगे, मणि भी नहीं, सूर्य उगते भी लाल और अस्त होते भी रात। राज मिले या वनवास मिले, राम के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। और तब राम जी ने कहा, माता आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था, अब मुझे कहा दिया होता मैं ऐसे कर लेता, आपने पिता को इसके लिए कष्ट क्यों दिया। और भोजराजनी में तो रामायण में एक जगह लिखा है उनकी कविता में कि राम जी ने कहा, माता वनवास में तो एक अपने शरीर की रक्षा करनी पड़ती और राज में तो पूरी प्रजा की रक्षा करनी पड़ती, आपने एक छोटा सा राज अयोध्या का अपने बेटे भरत को दिया, मेरे को इतना बड़ा वन का राज दिया, लोग कहेंगे कि केकई ने पक्षपात किया, राम को बड़ा राज दिया अपने बेटे को छोटा राज दे दिया। वो मां को फिर भी कहता है आपने मुझे बहुत बड़ा राज दे दिया है, पूरे वन प्रदेश का राज दे दिया है, आज कितने ऋषियों का दर्शन करूंगा और कितने लोग जो मेरे को देख नहीं पाते मिल नहीं पाते, मैं राजकुमार हूं जब मैं चलूंगा ऐसे वन में तो कितने लोगों से मुझे मिलना पड़ेगा। और रामचंद्र ने कहा मैं तेरे पिता के वचन अभी पूरे करूंगा, इसी वक्त पूरे करूंगा। महाराज दशरथ तो मूर्छित पड़े हैं, राम जी यहां से वापस लौटे हैं, अब पैदल जा रहे हैं, रथ के ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं। माता कौशल्या के भवन में गए, कौशल्या ने कहा बेटा राज तिलक हो गया क्या, ये नाश्ता कर लो, कलेवा लाई हूं, ये आसन है इसके ऊपर बैठ जाओ। राम जी आसन को हाथ लगाते हैं, कहते माता आज मेरे को पिताजी ने बन का राज दे दिया, अब तो फल फूल खाना है, अब ये आसन नहीं हमारे लिए, अब कुश के आसन के ऊपर बैठेंगे, आपसे आज्ञा लेने के लिए आए। माता कौशल्या तो मूर्छित होने जैसी लगी कि क्या कह रहे हो बेटा, मैं तो रंगनाथ की पूजा कर रही थी। माता कौशल्या के महल में जो आज रंगनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा होती है वो पूजा वहां हुआ करती थी। रंगनाथ आराध्य माँ कौशल्या का और दशरथ का पूजित ठाकुर है जो विभीषण को दिया था भगवान राम ने, और विभीषण जब ले जा रहे थे तो इस जगह पे जहां आज मंदिर है वहां नीचे रखा था, और दक्षिण मुखी ये मंदिर आज भी है और वहां से आगे गए नहीं। आज भी ये मान्यता है कि विभीषण पूजा करने के लिए रंगनाथ में आता रहता। सो उस वक्त लक्ष्मण आके आ गया, पता लग गया, लक्ष्मण आ गया। लक्ष्मण ने कहा बड़ी मां बड़ी मां, हमारे पिता अब बड़े हो गए हैं ना, वो केकई के कहने में आ गए हैं, मैं उनको बंदी बना के रामचंद्र का राज तिलक करूंगा। कौशल्या कहती है राम ये छोटे भाई क्या कह रहे हैं। राम कहते हैं लक्ष्मण पिताजी की आज्ञा का पालन पहला धर्म है, वैसे पिताजी ये आज्ञा दें कि बेटा ये चेकबुक तुम्हारा है साइन करो अकाउंट है, सब बच्चे खुश हो जाएंगे, ये आज्ञा पालन तो सभी कर लेंगे, लेकिन वनवास की आज्ञा पालन करो, कोई कठिन काम की तब पता लगेगा कि माता पिता की आज्ञा पालन करना कितना बड़ा धर्म है। आज कौशल्या को राम कहता अब आशीर्वाद दीजिए माता जी, ये 14 वर्ष तो बीतने में कोई बात नहीं है, त्रेता युग में 10,000 साल तक लोग जीते थे तो 14 वर्ष कौन से 10,000 में बड़े हैं, माता जी मैं आ जाऊंगा। माता जी कुछ बोल नहीं पाई, राम प्रणाम करके निकले अपने महल में आके। सीता कहती है क्या जल्दी हो गया इतना अभिषेक, बोला सीते नहीं अब वनवास का मेरे को राज मिला है, अभी मैं आज वनवास चला जाऊंगा। बोला हाँ अच्छा वनवास चले जाएंगे तो मेरे को ले चलिए। सीता वनवास में आप कांटे पत्थर आपने कभी धरती के ऊपर पांव नहीं रखा है, पालकी में बैठती हो, ये सफेद गदेलों के ऊपर आराम से रहती हो, राजकुमारी हो, वन में कैसे चल पाओगी। बोला मैं आपके आगे आगे चलूंगी, आपके आगे से कांटे साफ करती हुई चलूंगी, आप थक जाएंगे तो आपके चरण दबाऊंगी, मुझे आप पीछे मत छोड़ जाइए। बोला आप माताओं का देखभाल कीजिए, माताएं बड़ी दुखी है अभी। बोला मेरा धर्म पति की सेवा का है, मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं यहां नहीं रह सकती। राम जी ने कहा सीता बहुत कठिन है वन में जाना। तो सीता ने ऐसे अपने प्रेम के कारण कहा मेरे पिता को ये पता होता कि आप मेरे को साथ नहीं ले जाएंगे तो धनुष तोड़ने के बाद भी शायद आपके साथ विवाह नहीं करते, मैं आपको छोड़ के अकेली राजमहल में रहूं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे साथ ले चलिए। ये सीता की पतिव्रता की कहानियां बहुत बड़ी भारतीय संस्कृति की रक्षा का सूत्र बनी है, सुख हो तो भी पति के साथ, दुख हो भी तो भी पति के साथ, ऐसे नहीं सुख में रहें और दुख में साथ नहीं रहें। ये तो बहुत समय तक पेड़ों के नीचे बैठ के कथाएं जब लोग करते थे, तब घरों में माताएं कोई झगड़ा होता था, कहता स्त्री तो सीता जैसी होनी चाहिए, पतिव्रता, भाई भरत जैसा होना चाहिए, ये हमारे परिवारों की कुल परंपराओं की रक्षा का ये जो है मूल शास्त्र है रामायण। सो अब सीता को तो हाँ कह दिया, लक्ष्मण को कहा बेटा भैया अब पिताजी मूर्छित हैं, आप पिताजी का ध्यान रखना, आप यहां रहिए। मैं जाऊं, बोला मैं आपसे अलग हूं, ये मेरे से हो नहीं सकता, मैं आपके साथ जाऊंगा। भरत यहां, लक्ष्मण इस वक्त भरत नहीं, शत्रुघ्न नहीं, कोई नहीं है, पिताजी वहां पड़े हैं दुख में, माताएं दुख में, आप हमारे साथ कैसे जाएंगे? मैं आपके साथ जाऊंगा, आपसे अलग नहीं हो सकता, मैं यहां एक दिन भी नहीं रह सकता हूं, एक क्षण भी नहीं रह सकता हूं। तो फिर जाओ अपनी माता से आज्ञा लेकर आओ। अब लक्ष्मण जब माता सुमित्रा को प्रणाम कर रहे हैं कि मां मैं भैया राम के साथ वनवास जाना चाहता हूं, माता कहती है मुझसे क्यों आज्ञा लेने आए हो, तुम्हारे को तो मैंने सीता को दे दिया था, उससे आज्ञा लो ना, तुम्हारी मां वो है, और अगर आए हो तो सुन लो बेटा, आज से वन तेरे लिए अयोध्या है, राम तेरा पिता है और सीता तेरी माता है, इनको 14 साल के बाद वापस यहां लाओगे तब मुझे प्रणाम करना, तब तुमने मेरे दूध की लाज रखी है, मैं मानूंगी, ऐसी माता नहीं देखी है। बहुत बड़ा उदारता से ये शब्द कहे हैं सुमित्रा ने, और लक्ष्मण ने कहा कि मेरी मां कहती है सीता से आज्ञा लो, अब सीता क्या कहेगी, सीता तो स्वयं जा रही है, आज्ञा कह देगी। तो राम ने कहा लक्ष्मण ऐसे करो, तुम अपने अस्त्र भंडार से 2 बड़े धनुष, 2 तलवारें, तरकश और ये सब लेकर आओ, और सीता को कहा अब हम वनवास जा रहे हैं 14 साल के लिए। वशिष्ठ जी के बेटे सुयोग्य को बुलाया, बोला सुयोग्य गुरु पुत्र, हमें ब्राह्मणों की सेवा करना का काम बड़ा अच्छा लगता था, अब हम जा रहे हैं, ये संपत्ति हम आपको देते हैं, ये ब्राह्मणों की पूजा में कभी कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करने का बहुत शौक होता है, मांगते नहीं है, लेकिन लड्डू पूरी उनको खिलाते रहना, ब्राह्मणों को उसमें बड़े खुश हो जाते हैं। जयपुर के महाराज यज्ञ करा रहे थे, पंडितों के साथ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ में रोज कोई 10 किलो दूध को घाटा रबड़ी बनाकर उसके अंदर केसर पिस्ता डाल के फिर यज्ञ में स्वाहा करते थे। पंडित जी 5-6 दिन स्वाहा किया, लेकिन उसकी इतनी सुगंध आती थी कि स्वाहा से पहले खाने का मन करता। तो एक दिन पंडितों से रहा नहीं गया, एक कटोरी स्वाहा के निकाल ली, बाकी किलो 2 सब बांट के खा गए। रात को सोए हुए महाराज को स्वप्न में भगवान प्रकट हुआ, आज का यज्ञ है, मुझे पसंद है, ऐसा यज्ञ होना चाहिए। अब दूसरे दिन महाराज पूछते हैं पंडितों कल कैसे यज्ञ किया था, वो यज्ञ मुझे बताओ। अब पंडित थर थर कांपने लगे कि किसी ने देखा होगा रबड़ी हम पी गए, तो महाराज को पता लगेगा तो अब क्या होगा, और नहीं बताएंगे तो और ज्यादा दंड मिलेगा। बोला महाराज आप पूछते हो तो सत्य बोलते हैं, ये जो रबड़ी आती है ना, ये कल हमने पी ली, बस थोड़ी स्वाह में डाली। बोला भगवान को ये अच्छा लगा, आज से डबल रबड़ी बनेगी, आधी आपकी आधी यज्ञ की। तो वैसे ब्राह्मण के मुख से भगवान खाते हैं, तो यहां रामचंद्र ने व्यवस्था ये की, और फिर जो था घर में वो सब ब्राह्मणों में दान दे दिया। और बहुत अच्छी छोटी छोटी कथाएं कि ब्राह्मण को क्या दिया, कैसे दिया, गौदान किया, ऐसे सब कुछ देकर अब सीताराम लक्ष्मण पैदल चल के केकई के महल में अपने पिता से आज्ञा लेने के लिए निकले हैं। और जैसे ही महल में प्रणाम करने लगे रामचंद्र, तो दशरथ ने कहा देखो बेटा मैं इसकी चुंगल में आके फंस गया हूं, अब ऐसे करो तुम मेरे को बंदी बना दो और तुम राज तिलक ले करो, अब जाके राज पे बैठ जाओ, मेरी बात मत मानो। दशरथ ने ऐसे कह दिया। राम ने कहा पिता मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा, आप निश्चित हो जाइए। तब दशरथ ने कहा सुमंतर हमारी सेना राम जी के साथ वनवास में रवानी करो, और हमारा कोष के अंदर से सारा धन इनके साथ रवाना करो। अब कैकेयी कहती है, महाराज क्या मेरा बेटा भरत सूने राज के ऊपर बगैर सेना के और बगैर कोष के राज करेगा? महाराज ने कहा चुप करो, तुमने ये वरदान मांगा था क्या? ये तो नहीं मांगा था ना, अब बात मत करो। लेकिन राम जी कहते किसी की जरूरत नहीं है मुझे, अब हम आप आज्ञा दीजिए, बस आपका वचन पूरा करके लौटेंगे। दशरथ महाराज कहते सुमंतर रथ में इनको ले जाओ और सुनो नजदीक बच्चे हैं, थोड़ा घुमा के वन वापस लेके आना। और राम हो सकता है कि वचन पालन का पक्का हो, लेकिन सीता को तो वापस लाना, ये कहां बिचारी दुख देख सकेगी वनवास का। और रामचंद्र ने इतनी देर में अंदर से कैकेयी गई और वो जो पेड़ के छाल के कपड़े वो तैयार करके लाई, बोला राम जी आप ये पहन के जाओ, अब राजाई के कपड़े उतार दो। राम जी ने तो एकदम वो कुवलकल के कपड़े पेड़ की छाल के पहन लिए, लक्ष्मण ने पहन लिए, सीता बिचारी को कैसे पहनने में। उस वक्त वशिष्ठ को क्रोध आ गया, बोला कुल घातनी तुम्हारी पुत्र वधु है, इसको साड़ी में नहीं जाने देती हो, इसको वरकल क्यों पहना रही हो, इसको बनवास दिया है क्या? अब तो वशिष्ठ को क्रोध आया और सुमंतर मंत्री को क्रोध आया कि ये अत्याचार अन्याय है, क्या सीता को आपने बनवास दिया है? लेकिन सीता को रामचंद्र ने वो कपड़े पहनाए हैं, कैकेयी तो अपनी जगह पे खड़ी है, रामचंद्र रथ के ऊपर बैठे हैं, लक्ष्मण बैठे हैं, सीता बैठी है। और दशरथ बाहर निकल के कहता है आज रुक जाओ, थोड़ा राम को देखने दो, रथ को आस्ते चलाओ। राम जी कहते हैं अब देर मत करो, सुमन तेज चलाओ, जितना रथ आस्ते जाएगा उतना पिताजी को पीड़ा ज्यादा होगी। रथ जैसे जा रहा है, दशरथ जी पीछे जा रहे हैं, जब तक धूल रथ की दिख रही थी तब तक रथ को देख रहे थे, फिर धड़ाम से नीचे गिरे हैं। कैकेयी नजदीक आई तो देख के कहते हाथ मत लगाना मुझे, अब मुझे कैकेयी के कक्ष में नहीं जाना है, कौशल्या के महल में ले चलो, वहीं मुझे सुख मिलेगा। तो फिर अंगरक्षक वहां से लाके महाराज को कौशल्या के महल में बिठाया है। नगर से सारे ब्राह्मण राम जी के रथ के साथ चले, वो पूरा ब्राह्मण समाज सारा अयोध्यावासी रथ के साथ चल रहे हैं। अब रामचंद्र देख रहा है कि ये ब्राह्मण रथ के साथ कैसे चल पाएंगे, राम जी नीचे उतरे हैं मर्यादा में, और चलते चलते शाम हुई है, तमसा नदी के किनारे पे पहुंचे हैं, तो कहा यहां रात को विश्राम करते हैं। अब रात का पहर एक दो गुजरा है, सब जाग रहे हैं, फिर थके हुए आए थे सब सो गए, केवल राम नहीं सोया, लक्ष्मण नहीं सोया, सीता नहीं सोई, सुमंत्र नहीं सोया। क्यों नहीं सोए? थके नहीं थे? थोड़ा थके तो थे, लेकिन राम जी कहता है इतने ब्राह्मण ये समाज साथ वन में चलेगा तो इनकी व्यवस्था कैसे होगी, इनका देखभाल कैसे होगा वन में, और राज अयोध्या सूना हो जाएगा, यहां ब्राह्मण नहीं रहेगा तो अयोध्या कैसे है, और इनका परिवार दुखी हो जाएगा, इनको मैं ना नहीं कह सकता, वापस नहीं भेज सकता। अब सुमंत तुम रथ की ओर ले चलो और ऐसे दो चार चक्कर लगाओ कि पहियों का निशान इनको समझ नहीं लगे कि उत्तर दिशा में गए कि दक्षिण दिशा में गए, और उस वक्त ये सोए और रात को रथ उनका वहां से रवाना हो गया। अब रथ रवाना हो गया, ये उठे सुबह, ओ बोला नींद, वो जो सोया वो खोया और जो जागा वो भगवान के साथ भागा, धन्य है लक्ष्मण जो भगवान के साथ गया और हम भगवान, और पीछे पहिए देखे नहीं कुछ दिखाई दिया, बड़े दुखी होके वापस अयोध्या में लौटते हैं। अयोध्या वासी परिवार वाले कहते हैं राम जी को वापस नहीं लाए, वापस कैसे आ गए, आपको प्राण अभी तक कैसे रखे हुए? बोला हम तो छले, हमको नींद आ गई और जो सोता है वो खोता है, हमने राम जी को सोए सोए खो दिया। अब आगे से दूसरे दिन गोमती नदी को क्रॉस पार किया है, तीसरे दिन आया नदी के बाद, चौथे दिन श्रृंगेरपुर में पहुंचे हैं जहां भगवान रामचंद्र का बचपन का मित्र गुहा रहता है, निषाद उसको गले मिले हैं, ये रामचंद्र का पहला मित्र निषाद राज गुहा है। और उस गुहा ने कहा ये पृथ्वी के राजा तो आप हैं सारी के, और ये श्रृंगेरपुर आपका राज, आप यहीं प्राचीए, हम आपकी सेवा करेंगे, फल फूल कंद मूल लाए हैं। राम जी ने कहा गंगा जी का तट है, आज हम व्रत रखेंगे, कुछ पिएंगे, सिर्फ गंगा जल पिएंगे, खाएंगे कुछ नहीं, लेकिन हमारे ये जो घोड़े हैं ना, ये तो महाराज दशरथ के राजमहल के घोड़े हैं, इनको आप घास फल फूल खिला दें, इससे आपका सत्कार हो गया राज का। और रात को इंगूदी के पेड़ के नीचे घास बिछाया है, सीता और राम वहां विराजमान हुए हैं, गंगा का जल आया, राम जी ने जल को पिया, शेष सीता को दिया और सीता ने जल लक्ष्मण को दिया है, बस जल पिया है। रोज का नियम था, जब शादी होके आई सीता की, तो लक्ष्मण और सीता के बीच में झगड़ा किस बात का। लक्ष्मण कहता है आज 16-17 साल तक दिन रात में भाई की सेवा में, कल शादी करके आई हमको घर में आना ही नहीं है, अब जाए कहां। गए दोनों वशिष्ठ जी के पास, अब गुरुजी क्या करें। गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा है, जब महल में राम जी रहेंगे तब सीता सेवा करेगी, बाहर रहेंगे तुम सेवा करेंगे, सेवा का बंटवारा कर लेते और क्या करेंगे। तो ये नित्य नियम था लक्ष्मण का कि चरण दबाते थे, और जब चरण दबाते थे तो राम जी कहते थे सुमंत्रा नंदन अब जाके विश्राम करो, अब सो जाओ। आज राम जी ने कहा ही नहीं, तो क्या सोए, क्या थक गए थे राम जी इसलिए आंखें बंद हो गई सो गए। नहीं, राम जी जानते थे कि अब लक्ष्मण को 14 साल सोना नहीं, 14 साल ही वनवास क्यों, 12-13-11 क्यों नहीं, 14 साल जो ब्रह्मचार्य का पालन करेगा, सोएगा नहीं खाएगा नहीं, वही मेघनाथ का वध कर सकता है और कोई मेघनाथ का वध नहीं कर सकता। आगे कथा में एक दिन आता है कि राम जी ने कहा कि लक्ष्मण हम जब फल खाते थे तो आपको भी देते थे ना। बोला हाँ आप देते थे, मैं उसको स्वीकार करता था फिर वापस वन को दे देता था, वन का फल वन को। तो मां राम जी ऐसे कोतवाल का हनुमान, लक्ष्मण का फेंका हुआ फल कहीं नाश नहीं हो सकता, जाओ सब कठे करो। तो 14 वर्षों के फल कठे किए, दो कम पड़े गिनती में। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये दो फल कम कैसे हैं। बोला भ्राता याद करो, पिताजी के देहांत का सुना, उस दिन आपने नहीं खाया हमको नहीं दिया, जिस दिन सीता का हरण हुआ उस दिन आपने नहीं खाया मुझे नहीं दिया, ये दो कम है, आपने खाए नहीं थे, बाकी तो सब यही पड़े। तो न कभी खाया न कभी सोया और पक्का ब्रह्मचार्य का पालन किया, ये वरदान था। मेघनाथ को वही वध कर सकता है जिसमें ये सब घटित हो। तो आज लक्ष्मण सारी रात धनुष बाण उठा के वहां बैठा है। अब निषाद कहता है पता नहीं राजनीति में कुछ नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता राजघरानों का। अब लक्ष्मण शत्रुघ्न का भाई है, शत्रुघ्न भरत का सेवक है, ऐसा तो नहीं है रात को राम जी सो जाए ये कहीं उनसे हत्या, वो अपना तीर कमान उठा के सामने बैठ गया कि ये कुछ कहीं करे ना। और बाकी जो सारे वनवासी थे उन्होंने कहा ये भी राजा है वो भी राजमहल का है, पता नहीं इनकी क्या लालच हो, लेकिन राम सीता की रक्षा के लिए हम भी बैठे हैं, वो भी रात को अपने तीर कमान उठा के बैठ गए। वो सारों को इसको कहते हैं निरोध। निरोध लीला का मतलब है कि केंद्र एक होता है और सब उसी में इतने तलीन होते हैं एक दूसरे का पता नहीं लगता। जैसे एक भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा के लिए सारा गोकुल खाली कर दिया, सब गांव लोगों ने घर छोड़ दिया, हाँ अपना घर जमीन जायदाद सब छोड़ी और एक बच्चे के लिए सारा गोकुल खाली हुआ, अपनी गाय लेकर और बैलगाड़ियों में चढ़ के वृंदावन आ गए। तो एक बच्चा जहां केंद्र हो, यहां एक राम जी केंद्र है। दूसरे दिन सुबह हुआ है, सुबह होते ही भगवान रामचंद्र ने कहा है हे मित्र गुहा ये वट वृक्ष का दूध लेकर आ जाओ। दूध लाया है तो जटा जूट बांधे हैं, बड़े घुंघरालू सुंदर बाल थे, आज जटाएं बांधी है राम लक्ष्मण ने। और फिर यहां सुमंत्र कहता है हम आपके साथ चलेंगे राम जी। राम जी कहता है नहीं, जब तक ये राज का रथ वापस अयोध्या नहीं पहुंचेगा तब तक मां के कई छोटी मां को विश्वास नहीं होगा कि हम वनवास गए, आपका वहां जाना अति आवश्यक है, आप आगे नहीं चलिए, आप यहां से लौट जाइए। अब आंखों से आंसू बाहर आए और राम जी को गंगा पार करने में, अब राम जी यहां संदेश दे रहे हैं कि आप पिताजी को हमारा संदेश देना कि तीनों माताओं के साथ समान समान व्यवहार करना, और भरत को राज देने के बाद आप आनंद से बस हम 14 साल में आ ही जाएंगे। और लक्ष्मण जी ने जो शब्द कहे, राम ने कहा आपको मेरा शपथ है, मेरी सौगंध है, मेरा शपथ है, ये महाराज दशरथ को मत बताना जो वो लक्ष्मण कह रहा है। और तब सीता मां ने कुछ बोला नहीं और घोड़ों को रथ को देखते हुए आंखों से आंसू बहा रही थी। अब यहां भारी, सबका हृदय बहुत भारी है, अयोध्या की सीमा को भी प्रणाम करके आए हैं कि 14 साल के बाद मिलेंगे। अब गंगा पार करने का यहां प्रसंग आता है। वाल्मीकि जी के प्रसंग में केवट का प्रसंग नहीं है, लेकिन केवट के प्रसंग का अन्य पुराणों में ऐसा संकेत मिलता है कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु जब सोते हैं तो लक्ष्मी चरणों का दबाती रहती है और अनंत शेष पीछे सर के ऊपर ऐसे बैठे हैं। एक बेचारा छोटा कछुआ था, आके कहता है कि मैं भगवान के चरण को छूं तो लक्ष्मी कहती जाओ, सर के पास जाए तो शेषनाग कह जाओ। बेचारा दुखी होके आज केवट बन के बोला है कि अब चरण धोने का मौका मिलना चाहिए, ऐसा एक पुराणों में कथा आती है। अब दूसरी कथा ये आती है कि भगवान यहां थोड़े से विदा हो रहे हैं तो सीता भी दुखी है, तो कुछ रोचक ऐसे मन खुश करने वाला कोई प्रसंग होना चाहिए। तो केवट जी अपने नाव के ऊपर खड़े होके कहते हैं उस तरफ जाना है, मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाओगे? बोला मैंने सुना है आपके चरण के ऊपर लगी हुई धूली पत्थर को लगी हुई स्त्री बन गई, मेरी नाव को लगे ये स्त्री बने, एक घर में पहले ये दूसरी, अब तो झगड़ा हो और मेरा धंधा और बंद हो जाएगा, ये काम मेरे से नहीं होगा। अब सबको हंसी आएगी और क्या होगा, तो माहौल ऐसा नहीं, मैं आपको ले जाऊंगा, आपको जाना है तो थोड़ा आगे जाइए, घुटने जितना पानी है चले जाइएगा, मैं नाव में नहीं बिठाऊं। तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा क्रोध किया, राम जी ने कहा अब शांत हो जाओ, ये आपसे पहले से बहुत दुखी है। सीता जी चुप करके खड़ी है। केवट कहता है मैं आपसे कुछ मुझे परेशान नहीं, पांव कि जो रज्ज है ना इससे डर लगता है, तो क्या करोगे? पांव धोने दे दीजिए। भगवान ने कहा तो धो लो पांव। अब आप देखिए ये भाग्य केवल एक बलि महाराज का है जिन्होंने भगवान वामन देव का चरण धोया था, एक केवट है जो भगवान का चरण धो रहा है। जो गंगा भगवान से चरण के निकलती है वो तो ब्रह्मा जी के कमंडल में जाती है, फिर शंकर की जटाओं में आती है, तब जाके गंगा धरती पे आती है तो किसी का उद्धार करती है। यहां तो चरण सीधा धो के अपने हाथ सर के ऊपर, कितना भाग्यशाली ये केवट है, आज केवट ने चरण धोए हैं। हाँ रामचंद्र के अभी तो नाव में बैठे ना, तो पांव नीचे रखा। बोला नहीं, फिर रेती लग गई, आपसे डर थोड़ी है, अहे दे रेती से डर, फिर लग गई ना। बोला क्या करना चाहिए? अब मन में आया चरण तो धोए हैं, गले मिलना चाहिए। बोला आपको गोद में बिठा के बिठाऊंगा, पांव में धूली नहीं लगनी चाहिए। अब उठाया है राम जी को, गले मिला है, बिठाया है नाव में, अब राम जी का दर्शन कर रहा है, नाव चल रही है। दूसरे तरफ जब पहुंचे हैं तो सीता जी ने, राम जी ने सीता की ओर देखा और सीता ने अंगूठी निकाली है, अंगूठी अभी उंगली से निकली नहीं है। केवट ने कहा नहीं, माता की अंगूठी उतराई में नहीं लूंगा, माता की अंगूठी उतराई में नहीं लूंगा, आपको देना है जब वापस आओ तब देना, और फिर हमका हमारा ये नेम है, हम एक दूसरे से नाव वाले पैसा नहीं लेते, नाई नाई से नहीं लेता है, दर्जी दर्जी से नहीं लेता है, तो हम केवटों का ये नेम है कि नाव वाले से पैसा नहीं लेता है, तो हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। तो लक्ष्मण ने कहा, पूछा कि ये और राम जी एक जैसे कैसे, आप और राम जी एक जैसे कैसे? बोला हम गंगा पार करते हैं और ये भवसागर पार करते हैं, धंधा तो दोनों का एक है ना, धंधा तो दोनों का एक है, आज मैंने यहां पार किया वहां आप पार कर देना, बस यही हमारे लिए बहुत है। अब राम जी जैसे उतरे हैं वहां से, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आए हैं, भारद्वाज ऋषि बड़ा आनंदित हो गए हैं। भारद्वाज ऋषि ने राम सीता लक्ष्मण को कहा ये बड़ा सुंदर गंगा जमुना सरस्वती का तट है, यहां आप विराजमान हो जाइए। राम जी ने कहा बड़ा सुंदर आपका सानिध्य मिलेगा, लेकिन अयोध्या बहुत नजदीक है, लोग आते जाते रहेंगे, आपके आश्रम में भी अशांति हो जाएगी और हमारा भी वनवास का जो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमको बताइए कहाँ रहें। अब भारद्वाज कहते हैं राम जी सूर्य वंश में भागीरथ महान है जिसने धरती के ऊपर गंगा लाया, लेकिन दशरथ उससे महान है जो आपको धरती पे लाया रामचंद्र, और हमने जीवन भर का जो तप जप किया है उसका फल आज आपका दर्शन हुआ है, हम धन्य हो गए। दूसरे दिन उठे हैं तो कहा कि अब जमुना पार करें, तब तक तो ऋषि साथ आए हैं भरद्वाज जमुना तक, और वहां से ऋषि से विदा लिया है, आगे निकले हैं। तब रामचंद्र कहते लक्ष्मण सीता लोग ऋषियों के पास जाते हैं और ऋषि देखो हमको आशीर्वाद देने के लिए यहां तक आए, अब हमारा ये वनवास मंगलकारी होगा, आगे चलते हैं। आगे चलते हुए राम जी आगे चलते हैं, बीच में सीता पीछे लक्ष्मण धनुष उठाए हुए चलते हैं। एक जगह चलते हुए सीता के पांव में कांटा लगता, कांटा लगा, सीता नीचे गिरी, कांटा आर पार इतना भारी लगा, राम कह के गिरी, राम ने गोद में सीता को ऐसे सर रख दिया और लक्ष्मण कांटा निकाल रहा था। राम जी ने पृथ्वी की ओर देखा, बोला हे भूदेवी। पृथ्वी देवी खड़ी होकर कहती है रामचंद्र अब आपके रास्ते में कोई कांटा कंकर नहीं आएगा, सीता के रास्ते में आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा। रामचंद्र ने कहा नहीं, सीता के रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो पतिव्रता धर्म का दुनिया को पता कैसे लगेगा। लक्ष्मण के रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो सेविक धर्म का परिचय दुनिया को नहीं होगा। मेरे रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो राज धर्म का लोगों को पता नहीं लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना पृथ्वी देवी, मेरा प्रिय संत साधु भरत कभी इस रास्ते से आए तो कोई कांटा कंकर मत रखना। तो पृथ्वी कहती है रामचंद्र भरत साधु है तो कांटे से क्या डर। राम कहते हैं आप साधु की परिभाषा नहीं जानती है मां पृथ्वी, अगर भरत को कांटा लगा तो उसको अपना दर्द नहीं होगा, वो कहेगा सीता राम को कांटा लगा होगा, वो पीड़ा वो सहन नहीं कर सकेगा, इसलिए अब उस वक्त कांटा नहीं होना चाहिए। और जब भरत इस रास्ते से जाएगा तो आकाश में बादल है और पृथ्वी के ऊपर फूल बिछे हुए हैं, इतना कोमल है कि कहीं कांटा लगने का संकेत भी नहीं है भरत के लिए। अब आगे चले हैं वाल्मीकि जी की ऋषि आश्रम में आए हैं, सीताराम लक्ष्मण और वाल्मीकि जी का दर्शन किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और वाल्मीकि जी से राम जी पूछते हैं हम कहाँ वनवास के समय का निवास करें। तो वाल्मीकि रामायण में तो इतना ही लिखा है कि वाल्मीकि जी ने कहा कि आप यहां से आगे चित्रकूट बहुत सुंदर सुरमई वन है, मंदाकिनी का तट है, कमदगिरी पर्वत है, संत रहते हैं वहां जाके रहो। लेकिन तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर 14 स्थान लिखे हैं कि भगवान आप कहाँ रहें, आप अपने भक्तों के हृदय में रहो, आपके रहने की जगह तो भक्तों का हृदय है, जिसके हृदय में कपट नहीं है वो आपकी रहने की जगह है, जहाँ साधु संत रहते हैं वो आपके रहने की जगह है। बड़े सुंदर स्थान लिखे हैं जहाँ भगवान मिलता है, जैसे हमारे चेतना महाप्रभु के लिए कहते हैं चार जगहों पे चेतना महाप्रभु हर समय मिलते हैं, सची रंधन उनकी माता सची के रसोई घर में रोज अपने आप महाप्रभु प्रकट होते हैं, नित्यानंद कीर्तन जहाँ नित्यानंद कीर्तन होते हैं वहाँ चेतना महाप्रभु प्रकट होते हैं, श्रीवास आंगन श्रीवास आंगन में नित्य निरंतर रहते हैं, और राघवेंद्र झालना ये राघवेंद्र की बहन दमयंती 12 महीने के सूखे थैलियां बना के और सूखी सब्जियां सूखे आचार ये सब बड़ा थैला भेज दी थी, वो 12 महीने महाप्रभु के पास रहता था तो उसका जो थैला था वो याद रहता था। ऐसे ऐसे महाप्रभु अब यहां से श्री रामचंद्र सीता और लक्ष्मण आके चित्रकूट पहुंचे और गुहा ने पीछे से गुप्तचर भेजे थे, उनको देखा कि अब कुटिया बनाई है राम जी के लिए, सीताराम रह रहे हैं, लक्ष्मण दूसरे पहाड़ के ऊपर सामने रह रहे हैं उनके सुरक्षा के लिए। तब ये समाचार गुहा को मिला, गुहा ने ये समाचार सुमंत्र को दिया, तब यहां से सीताराम लक्ष्मण अब चित्रकूट में रह रहे हैं, और जितना समय चित्रकूट में रहे बड़ा सुखदायी समय गुजरा उनका। वो समय राम जी स्फटिक शिला के ऊपर बैठ के सीता को बाण चलाना सिखाते थे, सुंदर बहुत उस वन के अंदर बैठ के आनंद का समय, आप लोग जो भाग्यशाली कभी गए हैं नहीं तो चित्रकूट एक बार जरूर देखना, इतना बहुत सुंदर ये स्थान है। पर्वत भी है, नदी मंदाकिनी भी है, कंबदगिरी की 5 किलोमीटर की परिक्रमा भी है, और एक गुफा है जो इस हाल से बड़ी है, दरवाजा इतना छोटा है, मैं जाने में मुझे डर लग रहा था मैं कहीं फंस न जाऊं, इतना ही छोटा, बहुत छोटा दरवाजा है, मैं संकोच कर रहा था वैसे कैसे करके मैं चला गया अंदर वैसे, लेकिन अंदर जाने से इससे बड़ी गुफा है, वहां राम जी बैठते थे और अंदर में पानी निकलता है, गुप्त मंदाकिनी पानी के अंदर जाना पड़ता है अंदर, तो बहुत सुंदर, इतना सुंदर है, अभी भी कहते हैं ऑफ बीटिंग पीस ऑफ लैंड है, अभी कुछ ज्यादा वहां आधुनिकता नहीं आई है, बहुत प्राकृतिक है। सो चित्रकूट में राम जी का बहुत समय सुंदर बीत रहा है और समंतर यहां से वापस लौट रहा है। दोपहर तक ही अयोध्या की सीमा में रथ लेके आया, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी अयोध्या में जिनको प्रवेश करने की, लोग पूछेंगे क्या उत्तर दूंगा। संध्या काल को रथ को लेके सर नीचे करके कौशल्या के महल में आया है, तो दशरथ ने कहा सीताराम लक्ष्मण को वापस लाए। महाराज वो तो चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, राम जी ने आपके लिए क्या संदेश दिया मेरे लिए, कहा कि सब माताओं से समान भाव से। लक्ष्मण ने जो संदेश दिया है उसके लिए राम जी ने अपना मेरे को शपथ दिया है, लेकिन आप राजा हैं, आप अगर कहेंगे तो मैं तो ना नहीं कर सकता। दशरथ ने कहा राम जी का शपथ मत तोड़ो, मैं पिता हूं, मैं जानता हूं कि लक्ष्मण ने क्या कहा होगा, लक्ष्मण ने यही कहा होगा कि दशरथ का वध करके भी राम को मैं राज तिलक दूंगा, बोलो यही कहा था ना, अगर उसने ये कहा था तो मैं सुख से मर सकता हूं कि ऐसा बलिदान देने वाला मेरा पुत्र राम के साथ है, अब मुझे उसकी चिंता नहीं। और सीता के लिए कहा कि घोड़ों को देखकर आंखों से केवल आंसू बहे थे। दशरथ महाराज कहते कौशल्या कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, नजदीक आओ मुझे हाथ लगाओ। अब कौशल्या सुमंत्र चला गया और कौशल्या के मन में वात्सल्य भाव आता है, बोला महाराज आपने मुझे कहीं की नहीं रखी, एक तो स्त्री के लिए माता पिता होते हैं वो तो मेरे चले गए, दूसरा होता है पति वो मैं देखता हूं, अब आप जीवित रह नहीं पाएंगे राम की जुदाई में, और तीसरा होना चाहिए बेटा जो मेरा साथ देखभाल करे उसको तो आपने हाथों से वनवास भेजा है, मेरे तो तीनों अवस्थाओं को आपने समाप्त कर दिया है, अब मैं क्या करूं। आज दशरथ को इस बात के ऊपर क्रोध नहीं आया, कहा कौशल्या मुझे क्षमा कर देना, मुझसे ये बड़ा अपराध हुआ। तब तक तो कौशल्या सावधान होके पतिव्रता से कहते नहीं महाराज मैंने जो कुछ कहा मुझे उसके लिए क्षमा करना, मुझे नहीं कहना चाहिए था। और तब दशरथ कहता है कौशल्या अब मुझे याद आ रहा है जब मैं नौजवान था और शब्द भैरवी बाण चलाना सीख रहा था, तब एक दिन मैं सरयू के तट के ऊपर मैंने समझा कोई हिरण या हाथी पानी पी रहा है और मैंने शब्द भेदी बाण को रवाना किया और तब किसी मानव के चीख सुनाई दी, मैं जाके देखा तो एक ऋषि कुमार पानी भर रहा था, उसके छाती पे बाण लगा था, उसने कहा मेरे को बाण निकालो पीड़ा हो रही है, मैंने कहा बेटा बाण निकालूंगा तेरे प्राण निकल जाएंगे, और तब उसने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूं आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, मेरे माता पिता बूढ़े आगे हैं वो सूरदास हैं आप उनको पानी दे देना। दशरथ कहता है मैंने बाण निकाला उसके प्राण निकले और मैं पानी का मटका लेके बूढ़ों के पास जब गा वो मेरे पांव के आवाज को सुन के कहा कि कहां श्रवण कुमार नहीं हो कहां है मेरा बेटा, मैं अयोध्या का युवराज दशरथ हूं और इस तरीके से मेरे से अनजाने में बाण उनको लगा है, मैं आपके लिए आपके बेटे के कहने के ऊपर जल लाया हूं। उन्होंने कहा आप जल नहीं पियेंगे, बस आप इतना कीजिए हम आपको शराब इसलिए नहीं दे सकते कि आपने सत्य बोल दिया, अब आप हमको यहां से उठा के हमारे बेटे के पास ले चलिए। दशरथ कहा था मैंने उन दोनों को उठाया है अपने बेटे के पास लाए तो उन्होंने बेटे के पास बैठे और फिर उनके बेटे के पास बैठते ही उनके प्राण निकल रहे, लेकिन निकलने से पहले उन्होंने दो शब्द मेरे को कहे थे, कहे अब हम अपने पुत्र की वियोग में पुत्र की जुदाई में प्राण दे रहे हैं, महाराज एक समय आपके प्राण भी पुत्र वियोग में निकलेंगे, लगता है कौशल्या वो समय आ गया। वो समय आ गया है। ये कहा महाराज दशरथ ने, और आधी रात को महाराज दशरथ के प्राण निकल गए। जब नंद बाबा 10 साल और 7 महीने के बाद कृष्ण बलराम को मथुरा में छोड़ के वापस लौट के, कृष्ण बलराम मथुरा वृंदावन में वृंदावन में 10 साल 7 महीने तक रहे, 11 साल से पहले ही वृंदावन छोड़ दिया, और जब गए तो नंद बाबा सब लोग गए थे वहां। लेकिन जब कंस के वध के बाद नंद बाबा के बाद कृष्ण आया तो बोला चलो बेटा अब चलें कृष्ण बलराम। बोला बाबा अब यहां इनका हित करना है, रहना पड़ेगा। कंस के मारने के बाद कंस की 2 पत्नी अस्ति और प्राप्ति का पिता जरासंध यहां आक्रमण करेगा। अपने पास गोकुल में व्यवस्था नहीं है, वृंदावन में व्यवस्था नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि ब्रजवासियों को संकट हो, तो कुछ समय में यहां रहूंगा, आप जब याद करेंगे तब आ जाऊंगा। नंद बाबा तो ऐसे पत्थर बन गए, बैलगाड़ियां चली। जब पहुंचे हैं नंद गांव में तो यशोदा कहीं बगैर कृष्ण बलराम के कैसे आ गए, और यशोदा के पुत्र मोह ऐसा हो गया, बोला तुम जीवित कैसे आए, तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकल गए। तब महाराज नंद कहते हैं पिता तो एक ही हुए हैं दशरथ, जिस दिन राम के न आने का सुना प्राण निकल गए, हमारे अभी तक प्राण कैसे रहे हैं हम जानते नहीं है, एक ही पिता हुआ है पृथ्वी के ऊपर, जो पुत्र न आने का सुना तो प्राण निकल गए। फिर कहने लगे नंद बाबा कि मैं यशोदा अगर मेरे प्राण निकल गए होते तो तेरे प्राण भी निकल जाते, तू भी जीवित नहीं रहती, तो ब्रजवासी जीवित नहीं रहते, और कन्हैया ने कहा है कि मैं वापस लौट के आऊंगा, अगर वो आएगा और हमको नहीं पाएगा तो उसको कितना दुख होगा, अब उसकी खुशी के लिए हम रोज जिएंगे रोज मरेंगे, आंसू बहाएंगे लेकिन प्राण नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो आएगा और हम नहीं होंगे तो उसको बड़ा दुख होगा। तो ऐसा दशरथ एक अनुपम उदाहरण है जो राम के वियोग में, और ऐसे भाव में कहते हैं राम कथा कहने वाले शास्त्र में, कि जब महाराज दशरथ ने कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तब असल में उसको सीताराम दिखाई दे रहे थे, उन्हीं का ध्यान कर रहा था, और सुमंत्र को कहा भी कि अब मेरे को राज में नहीं रखना, महल में नहीं रहना है, मेरे को जहां मेरा राम है वहां ले चलो। तो आज दशरथ के जब यहां देवलोक जाने का समाचार मिला है, रानियां तो विलाप कर रही हैं, और गुरु वशिष्ठ ने आके कहा अब रानियों को एक तरफ करो, और सुगंधित औषधि वाले तेल में महाराज के शव को रखा जाए। और फिर तत्काल एक सभा बुलाई गई जिसमें 8 मुख्य मंत्री और सारे ऋषि, और जो वामदेव को बुलाया, सुकेतु ऋषि को बुलाया, सुयोग आया और मार्कंडे आया, सब ऋषियों ने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो सबने कहा महाराज वशिष्ठ आप ही इस रघुवंश के पुरोहित हो, अक्षवाकु वंश के, आप जो कहेंगे वही सत्य है, हम सब आपके साथ हैं। तो महाराज वशिष्ठ कहते हैं पहला वचन महाराज दशरथ का रामचंद्र ने पूरा करके वनवास तो चले गए। अब उनका दूसरा वचन पूरा करने के लिए भरत का यहां तत्काल आना अति आवश्यक है, इसलिए पहले किसी को भेज के कैकई देश के भरत और शत्रुघ्न को बुलाया जाए, और उसके बाद जो है सारी कार्रवाई होगी। तो तत्काल दूतों को कहा कि आप कहीं रुके बगैर सीधा कैकई देश जाओ, और भरत और शत्रुघ्न को कहा गुरु ने बुलाया है, कुछ वतन बताना क्या हुआ है, बस तत्काल उनको लेकर आओ। तीव्र गति से 7 दिन लगे उनको जाने में, और रात को भरत को भी अपशकुन होने लगे, शत्रुघ्न को कहता है लगता है कि कुछ अहित हो गया, अनिष्ट हो गया है अयोध्या में। तब तक सुबह दूत पहुंच गए, कहा कि महाराज वशिष्ठ ने तत्काल आपको बुलाया है, और भरत तो तीवर आके सीधा रथ में बैठा, ननियाल वाले जो उपहार लाए उनकी तरफ देखा तक नहीं, और जैसे वापस आके पहुंचे हैं अयोध्या में, तालाब के कोई ऊपर पानी नहीं है, लेने भरने वाला नहीं है, कपड़ा धोने वाला नहीं है, दुकान बंद पड़े है, अयोध्या सोनी पड़ी है। इसको बड़ा आश्चर्य लगा ये अयोध्या, और कोई भरत की ओर देख के ऐसे मुंह फेर रहा है, कोई देख रहा है तो घर से बाहर निकल के भरत को बड़ी पीड़ा होने लगी और सीधा केकई के कक्ष में गया कि वहीं महाराज मिलेंगे। वहां देखा तो सोने के सिंहासन के ऊपर केकई विराजमान है। प्रणाम करके कहा मां पिताजी कहां है? केकई ने कहा बेटा धीरज धरो, पिताजी तो दो लोग चले गए। हाँ ए पिता, ऐसे करके पछाड़ के गिर के भरत ऊपर उठे हैं और कहा पिता नहीं रहे तो मेरा अब तो पिता राम ही है, बड़ा भ्राता पिता के समान है, राम कहां है वहीं मेरे को सुख मिलेगा। अब तो केकई को चिंता होने लगी कि मैं कैसे बताऊं राम कहां है। फिर भी धीरज बांध के कहती है बेटा राम तो वनवास चले गए। कैसे वनवास गए, क्यों वनवास गए, क्या करने के लिए गए? बेटा ये राज मैंने आपके लिए मांग लिया और राम को वनवास भेज दिया। अब भरत कहता है मां आपने मां कहने का अधिकार आज अपना समाप्त कर लिया और मेरे को बहुत लज्जा आ रही है कि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया है। आज मुझे आपने कलंकित कर लिया इस राजभवन में और विश्व भर में, अब मुझे यहां सुख नहीं मिलेगा। इतनी देर में वो कुबड़ी आई वहां से, केकई ने कहा था मेरा भरत राजा बनेगा तो तेरी कुबड़ के ऊपर सोने का हार पहना दूंगी। उसने कहा लाला आपके लिए राज लिया है। भरत ने तो देखा नहीं, शत्रुघ्न ने चोटी से पकड़ के एक लात मारी और चिल्लाई। भरत ने देखा बोला भैया मारने को तो मैं केकई का सर काट दिया होता, ये मैं सुन नहीं सकता था राम का वनवास, लेकिन राम को पता लगेगा कि हमने स्त्री के ऊपर हाथ उठाया है तो राम हमसे बात भी नहीं करेगा, इसलिए इस कुबड़ी को छोड़ दो। अब हमारे को कौशल्या माँ के चरणों में जाना चाहिए और कौशल्या के महल में प्रवेश भरत किया है। कौशल्या के मुख से एक शब्द निकला बेटा केकई की इच्छा पूरी हुई। भरत मां के चरणों में गिर के सप्त खाता है मां इस सारे षड्यंत्र में कहीं मेरा भाग हो तो ब्रह्म हत्या लगे, गौ हत्या लगे, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं। तब कौशल्या कहती है बेटा मेरा भरत ऐसा मुझे आपसे आशा नहीं थी, लेकिन आप गले लगाया है। और तब तक वशिष्ठ जी ने कहा भरत पहले महाराज के अंत्येष्टि क्रिया का कार्य पूरा करना चाहिए और अब महाराज दशरथ को निकाला गया है सुगंधित औषधियों वाले तेल से, बड़ा सुंदर वैकुंठ का विमान जैसा बनाया है, सरयू के तट के ऊपर लाए हैं, अंत्येष्टि क्रिया हो गई। तब सभा बैठी है, सभा जब बैठी है तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं पहला वचन तो रामचंद्र ने पूरा किया आपके पिता दशरथ का, अब बेटा प्रजा को अनाथ तो नहीं रखा जा सकता, इसको सनाथ करो, आप राज सिंहासन पे बैठो और पिताजी के दूसरे वचन को सत्य करो। तब मंत्रिमंडल ने कहा जो गुरुदेव कह रहे हैं राज बगैर राजा के नहीं चलता है, राज अभिषेक की सामग्री तैयार है, आप भरत राज अभिषेक के लिए अनुमति दीजिए। अब माता कौशल्या भी कह रही है गुरुदेव जो कह रहे हैं ये ही इस वक्त में औषधि है इस रोग की। उस वक्त भरत ऊपर उठे हैं, कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा का तो मैं उल्लंघन कर नहीं सकता, मंत्रिमंडल आप हमारे पिता दादा के मंत्री रहे हो, हमारे लिए आप भी सन्मान्य हो और माताओं आपकी आज्ञा का उल्लंघन होना मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन मां कौशल्या मेरा रोग क्या है जिसका निदान आपने राज तिलक बताया है? मेरा रोग तो ये है कि रामचंद्र वनवास में गया है, ये मेरा रोग है, सीता वन में गई है, ये मेरा रोग है, इसका निदान राज तिलक नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं हानि लाभ यश अपयश जन्म मृत्यु ये तो विधि के हाथ में है, भरत आपको सहना चाहिए, बोला आप ठीक कह रहे, यश मिलेगा लक्ष्मण को जो राम जी के साथ गया है, अब यश मिला मुझे और मेरी मां को, मृत्यु तो हुई मेरे पिता की यहां और आगे होगी रावण की। और फिर भरत कहता है अगर मैं राज सिंहासन के ऊपर बैठ गया तो राम कभी अयोध्या नहीं आएंगे, इस आसन के ऊपर फिर नहीं बैठेंगे। क्या आप चाहते हो राम कभी वापस यहां नहीं आए? क्या कभी इक्ष्वाकु कुल में ऐसे हुआ है कि बड़े बेटे के होते हुए छोटा राज तिलक में लेकर बैठा हो गुरुदेव? ऐसा कभी हुआ है क्या? क्या आप चाहते हैं कि लोग संसार में कहें कि पिता मरे तो मरने दो, माताएं विधवा हो तो होने दो, भाई बन में भटके, भाभी बन में भटके, छोटा भाई दुख भोगे, प्रजा दुखी हो, मैं राज करूं? क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसा उदाहरण बनूं? लोग कहेंगे भरत ऐसा राजा था जिसके कारण पिता की मृत्यु हुई, माताओं को विधवा होना पड़ा। मैं आप सबको हाथ जोड़ के कहता हूं, भरत कहते हैं मैं रामचंद्र का दर्शन करने जाऊंगा और उनको मना के लाके राज अभिषेक करके यहां बिठाऊंगा और उनकी जगह पे मैं वनवास चला जाऊंगा। आज तो सबके आंखों में आंसू है लेकिन दुख के नहीं, आज खुशी के आंसू है। किसी के दिल में थोड़ा भी भरत के लिए शंका थी आज धुल गई। बोला आज तो एक और हमारे को अवसर राम के दर्शन का मिलने जा रहा है, अब हम राम का देख पाएंगे। और भरत ने कहा अब मेरी आज्ञा ये है कि वन का रास्ता बनाने वाले यहां से रास्ता बनाएं और गुरुजनों माताओं के साथ हम सामग्री साथ ले चलेंगे मंत्रिमंडल के साथ, जहां रामचंद्र है उनका अभिषेक करके और उनको यहां वापस लेकर आएंगे। अब तो अयोध्या फिर बहुत खुश हो गई भरत के इस वचन सुनकर कि भरत को राज का लालच नहीं है, भरत तो हमको राम का दर्शन कराएगा। दूसरे दिन सबकी तैयारी हुई है, अब गुरुजनों को रथ के ऊपर बिठाया तो आज अरुंधति कहती है वशिष्ठ को आपके शिष्य और पुत्र राम को दर्शन करने की मेरी भी अभिलाषा है। अरुंधति बैठी है वशिष्ठ के साथ रथ पे और सारे ऋषि मंडल बैठा है, माताओं को पालकियों में उठाया है और ये अब यात्रा आज यहां से राम जी को मनाने के लिए जा रही है। आज यहां कथा को विराम देते हैं, खुशी के माहौल में कथा को छोड़ते हैं, कल फिर आगे की कथा करेंगे। जय श्री राम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बाल कांड में भगवान राम की भगवता का दर्शन कराया गया है, भगवान का प्रकट्य यज्ञ से, खीर से, पायसम से हुआ, बड़े पराक्रम करके ताटका और इनका वध किया, धनुष को उठाया, अहल्या का उद्धार किया, ये इसमें भगवान की भगवता रामचंद्र की बलबाल कांड में। आज ये अयोध्या कांड चल रहे हैं इसलिए भरत की महिमा का कांड है कि भरत कितना महान है, भागवत पुरुष है भक्त। राम का बहुत प्रेमी भक्त है भरत का, और कल हम उनकी उनके और श्रवण करेंगे भावों का। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
क्या हो गया था इसको?
पुण्य के पूज के बिना संतों का संग नहीं मिलता। तुलसीदास जी रामचरित मानस में कहते हैं पुण्य पूज बिनु मिल ही न संग। कितनों को हम बुलाते हैं, कितनों को मैसेजेस देते हैं, लेकिन यह पुण्य और श्रद्धा हम सबों को इस सत्संग में ले आती है। तो आज प्रभु जी ने तो काफी चीज बताई लेकिन